मनुष्य जन्म का सदुपयोग करना ये हम सबका चरम कर्तव्य है। ये सारी बातों को रूप गोस्वामी सुन रहे थे चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को एक के बाद एक के बाद एक आध्यात्मिक ज्ञान के रहस्य को बता रहे थे। चैतन्य महाप्रभु बताए कि कोई व्यक्ति धर्म का आचरण करता है और अलग अलग भौतिक कामनाओं को पूर्ति करने के लिए यज्ञ कर्मकांड का मार्ग चुनता है तो वह व्यक्ति उस भौतिकवादी जो पापी व्यक्ति है उससे अच्छा है, क्योंकि कम से कम वह भगवान के शरण में जाना चाहता है अर्थात भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है। लेकिन उससे भी अच्छा है वो व्यक्ति कि जो शरीर को नश्वर मान करके आत्मा का ज्ञान में स्थिर रहता है, वह व्यक्ति जिसका सांसारिक आसक्ति नष्ट हो चुका है, वह व्यक्ति जो अपने जीवन के मूल्य को समझ रहा है, वह व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि उसने इस शरीर को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने का निर्णय ले चुका है। लेकिन हजारों हजारों ज्ञानी में से किसी एक ही व्यक्ति को भगवान की भक्ति का यह अमृत प्राप्त हो सकता है। भगवान देव नामते ज्ञानवान वाम प्रबंधित है। अनेक अनेक जन्मों के पश्चात कोई ज्ञानी व्यक्ति ही वासुदेव सर्वमिति कृष्ण ही सर्वस्व है यह जान सकता है। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, वो व्यक्ति महात्मा है। किसी भी व्यक्ति को महात्मा तो भगवान नहीं कहे, किसी भी व्यक्ति को केवल नाम महात्मा देने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। और एक जगह भगवान भगवद गीता में कहते हैं मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित यतते सिद्धये, हजारों हजारों मनुष्य में से कोई एक मुझे समझने का प्रयास करता है और कोई एक सफल होता है, यततां अपि सिद्धानां इससे सफल होने वाले में से मुझे समझने वाले में से कोई एक मुझे वस्तुतः जान पाता है। यततां अपि सिद्धानां कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, तत्वतः मुझे कोई एक ही व्यक्ति ऐसा बड़ा दुर्लभ व्यक्ति होता है समझ सकता। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बताया ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, सारे ब्रह्मांड में कोई एक ही भाग्यवान जीव हो सकता है जिसको गुरु और कृष्ण के शरण प्राप्त हो सकता है, बड़ा भाग्यवान होता है। देखिए जैसे आप यहाँ पर हम बैठे हैं, गांधीनगर में कहीं हजारों लाखों लोग रहते हैं, लेकिन कितने भाग्यशाली यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हम भगवान का शुद्ध संदेश बता रहे हैं, भगवान की भक्ति और दिव्य कथाओं का महिमा बता रहे हैं, लेकिन बड़े भाग्यशाली लोग यहाँ पर आए हैं। और ये भाग्यशाली में से जो अधिक भाग्यशाली है वो इसको गंभीरता से लेते हैं, और उनमें से भी जो अधिक भाग्यशाली है वो पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण करने का निर्णय करते हैं। कौन भाग्यवान जीव ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान, बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हो सकता है। और ये भाग्यशाली व्यक्ति आप में से हर कोई हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए असंभव है, किसी के लिए संभव है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने हिरण को कृष्ण प्रेम दिया, शेर को कृष्ण प्रेम दिया, हाथी को कृष्ण प्रेम दिया। इसलिए संभव असंभव की बात मत करो, अपनी इच्छा प्रस्तुत करो। ये अवश्य है कि कृष्ण भगवान के चरणों में अगर आप अपना जीवन समर्पण करेंगे तो आपको कुछ त्यागना पड़ेगा, और वो क्या त्यागना पड़ेगा आपको? आपके कष्टों, आपके दुखों को। क्या आपके दुख को त्यागने के लिए आप तैयार हो? अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा दुखी रहे, तब तो कृष्ण भक्ति आपको सहायता नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति स्वीकार करना चाहते हो तो आपको दुख को त्याग करना पड़ेगा, आप हमेशा प्रसन्न है रह पाओगे। अगर आप इस चीज को स्वीकार करते हो तो ये कृष्ण भक्ति आपके लिए है कि आप हमेशा प्रसन्न रहोगे। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, किसी भाग्यशाली व्यक्ति के लिए यह बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है कि गुरु और कृष्ण का कृपा प्राप्त होता है। कृष्ण सबको नहीं मिलते, गुरु भी सबको नहीं मिलते। हजारों हजारों लाखों लाखों लोग तपस्या करने के बाद भी समझ नहीं सकते कि भगवान कौन है। हजारों ऋषि मुनियों की सभा में भृगु मुनि ने प्रश्न पूछा, भगवान कौन है? इसलिए दुर्लभ व्यक्ति भगवान के चरण में आ सकता है। गुरु कृष्ण प्रताप प्रसाद पाए भक्ति लता, ये भक्ति की तुलना की गई एक लता के साथ। जैसे कोई लता होती है, उसका बीज, भक्ति का बीज किसको प्राप्त हो सकता है? गुरु कृष्ण की कृपा से। एक बार नारद मुनि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के पास गए थे, तो द्वारका में देखा तो भगवान सबको वरदान दे रहे थे, सब अपनी अपनी इच्छा पूरी कर रहे थे, लेकिन भगवान लेफ्ट हैंड से दान दे रहे थे। कुछ लोग आए, कुछ वरदान मांगे, भगवान बोले तथास्तु। दूसरा कोई व्यक्ति आया, कुछ वरदान मांगे, तथास्तु। एक व्यक्ति आया, कहा मुझे आपकी भक्ति दीजिए। भगवान बोले कि आपको वेटिंग में खड़ा रहना पड़ेगा, भाई साइड में खड़े हैं। दूसरे व्यक्ति को बुलाया, नारद मुनि ये सब देख रहे थे। नारद मुनि ने जाकर पूछा भगवान को, ये जो आपकी भक्ति मांगने आते हैं, आप उसको साइड में क्यों खड़ा कर देते हो वेटिंग लिस्ट में? भगवान बताए कि इन लोगों को मुझे स्पेशली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भक्ति सबको नहीं देता। कृष्णा यदि छूटे भक्ति मुक्ति दिया, कृष्णा यदि छूटे भक्ति भक्ति मुक्ति दिया, कृष्णा यदि कृपा करना चाहे तो भक्ति मुक्ति दे सकते हैं। भक्ति आखिर लुकाई गया, भक्ति जो है उसको छिपा कर रखते हैं, नहीं देते। भक्ति सबको नहीं मिलती, बाकी आप जो चाहो ले जाओ, अष्ट सिद्धि चाहिए ले जाओ, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, स्त्री चाहिए, जो चाहे ले जाओ, भक्ति नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते प्रभु आप भक्ति? क्योंकि भक्त के सामने फिर मैं पराधीन हो जाता हूं। जब मैं किसी को भक्ति देता हूं तो फिर मैं अपने आप को बेच देता हूं उसको, फिर वो कहता है कि प्रभु बैठ जाओ, तो मुझे बैठ जाना। कभी कहते हैं उठ जाओ, उठ जाना पड़ता, मेरा अपना कोई स्वतंत्रता नहीं रहता। फिर जैसे आप कल पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, वृंदावन जाना चाहते थे प्रभु, बार बार पूछते थे मैं जाऊँ मैं जाऊँ मैं जाऊँ, और भक्त लोग कहते नहीं अभी निकल जाओ, मैं अभी नहीं, बाद में जाना। और भगवान सबकी बात को स्वीकार किए। तो कृष्णा भक्ति का जो बीज हमें प्राप्त होता है, बड़ी कृपा से, बड़ी सौभाग्य से हमें ये बीज प्राप्त हो सकता है। जैसे आप लोग यहाँ पर आए हो, ये कृष्ण भक्ति का बीज हमें प्राप्त हो चुका है, किंतु इस बीज का पानी अगर आप पिलाओगे तभी पौधा उगेगा ना उसमें। यह बीज को पानी की आवश्यकता होती है, अगर उसको पानी दिया जाएगा तो ये बीज में से पौधा निकलेगा और फिर वह लता बढ़ सकती है। हम इसी संसार में रहते हुए हमारे हृदय में इस भक्ति के बीज को धारण किए रखें और श्रवण और कीर्तनम इसका जल है, इस बीज को सिंचन करने का जल, हरि कथा का श्रवण और हरि कथा का कीर्तन करना, भगवान के गुणगान को सुनना, भगवान के गुणगान करना, यह इस भक्ति के बीज को नरिशमेंट, पोषण देती है और फिर धीरे 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 उस बीज में से लता का विकास होता है और फिर यह लता धीरे 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 आगे बढ़ती है। अधिक से अधिक आप 16 माला जप करते हो, 4 नियम का पालन करते हो, इस तरह से भक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ती है। 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम मंदनम दासन सख्यम आत्मनिवेदन। तो ये 9 प्रकार की भक्ति की विधियों का पालन करने से हमारी भक्ति का जो बीज है वह स्फुरित होकर के लता का रूप लेता है और फिर लता धीरे 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 आगे बढ़ती है। लेकिन इस लता का देखभाल करना ये हमारा अपना कर्तव्य है। समझ लो अगर आपके बगीचे में लता आपने बोई है, बीज बोया है, आप उसको रोज पानी पिलाते हो, तो क्या आपका ये उद्देश्य नहीं, क्या आप ये कर्तव्य नहीं कि उस लता के साथ कोई पशु पक्षी उसको नष्ट ना कर दे? इस चीज को आप ध्यान रखते हैं कि नहीं? छोटी सी लता पौधा जो होता है उसकी रक्षा करने के लिए आप नियमित रूप से चेक करते हो ना कि कोई पशु ना आ जाए, उसको उसको नष्ट ना कर दे। उस लता के साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी, ऐसे भी चीज निकल आती है कि जिसकी आवश्यकता नहीं होती। अनवांटेड क्रीपर्स ये निकल आते हैं और ये अनवांटेड क्रीपर्स क्या करते हैं, जो पानी आप पिलाते हो पौधे को, वो पानी पौधे के बदले वो अपने खुद ले लेते हैं और पौधा जो होता है वो सूखने लगता है। आपने देखा होगा जो लता है वो सूखने लगती है और अनवांटेड जो क्रीपर्स होते हैं वो फूलने लगते हैं, फलने लगते हैं। जब हम कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं तो धीरे 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 हमारी लता विकसित होती है और उसके साथ ही अनवांटेड क्रीपर्स खड़े रहते हैं। ये क्या होता है, अनर्था, जिसकी आवश्यकता नहीं, जिसमें हम ध्यान से जप नहीं करते, व्यर्थ प्रलाप करते रहते हैं, नियमों का ठीक से पालन नहीं करते, अलग अलग प्रकार के अपराध करते हैं, अनेक प्रकार के अपराध होते हैं जिसमें सेवा का अपराध, भगवान ठाकुर जी का सेवा करते हैं अर्चन विधि में, तो उनके अगर अगर आप नियम को पूर्ण रूप से नहीं जानते, आपका भाव अगर गलत हो गया किसी क्षण, एक क्षण के लिए भी, तभी भी सेवा का अपराध हो सकता है। फिर नाम का अपराध, नाम का अनेक महिमा सुनने के पश्चात भी हम भौतिक आसक्ति बना के रखते हैं,
गुरु के चरणों में अपराध। गुरु हमें कुछ शिक्षा देते हैं, आदेश देते हैं, उसका पालन हम नहीं करते, उनको साधारण मनुष्य मान बैठते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रकार के अपराध से बचना पड़ता है, तब जाके आपकी भक्ति की लता जो है वो पूरी आगे बढ़ सकती है। सारे अपराधों में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है वैष्णव अपराध। ये वैष्णव अपराध की हमने चर्चा की थी एक दो दिन पहले, जब नित्यानंद प्रभु ने जगाई मधाई का उद्धार किया था, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जगाई मधाई के द्वारा किए गए जितने भी पाप है वो सारे पाप उन लोगों को दान में दिए जाएंगे जो लोग वैष्णव की निंदा करते हैं, जो लोग वैष्णव अपराध करते हैं। अपराध शब्द का अर्थ होता है दुखी करना, कष्ट पहुंचाना। तो वैष्णव का अपराध जो है इसको चैतन्य महाप्रभु बताए पागल हाथी की तरह, हाथी माताल, पागल हाथी। पागल हाथी क्या करता है, अगर वो आपके बगीचे में घुस जाए तो सब कुछ तहस नहस कर देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है, आपकी भक्ति की लता को उखाड़ करके फेंक सकता है। इसलिए इस पागल हाथी से बचने के लिए हमें सब प्रकार के अपराधों से सावधानी से बचने का प्रयास करना चाहिए। यह बात रूप गोस्वामी को बताई गई चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। जब मन हमारा अन्य अभिलाषिताओं से मुक्त हो जाता है तब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा हो सकती है। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अध्यना होता, जब ज्ञान और कर्म के ये जो दुष्प्रभाव से मनुष्य की भौतिक कामनाएं जब शून्य हो जाती है और उसकी एकमात्र इच्छा रहती है केवल कृष्ण की प्रसन्नता, अन्य अभिलाषिता शून्य आनुकूल्य कृष्णानुशीलन, केवल भगवान के अनुकूल कार्य को ही स्वीकार करते हैं और भगवान के जो प्रतिकूल कार्य है उसको त्याग करते हैं। आनुकूल्य कृष्णानुशीलन वह भक्ति उत्तम, वह उत्तम भक्ति कही जाती है। अगर हम कोई भक्ति में जुड़ते हैं, जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें उसकी बाय प्रोडक्ट्स मिलने लगती है। जैसे लोग आपका सम्मान करेंगे, आपको लाभ पूजा प्रतिष्ठा देंगे, आपको प्रणाम करेंगे, आपके अनुयायी बनेंगे, ये सब बाय प्रोडक्ट मानी जाती है भक्ति की। इससे भी सावधान होकर के आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि ये भक्ति का शत्रु के रूप में काम करते हैं। जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा जो है वह भक्ति के मार्ग में अवरोध के रूप में खड़ी रह जाती है और उस व्यक्ति में उस चीजों में जो फंसा भक्त है वह उत्तम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, उससे निकलना पड़ता है उसमें से। जैसे ही उसको कृष्ण के चरणों में अनुराग प्राप्त होने लगता है, जैसे उसको दिव्य रस का अमृत प्राप्त होने लगता है, जैसे उसको भक्ति की विधि विधान में स्वाभाविक रुचि प्राप्त होती है, जैसे उसको भगवान के दिव्य नामों में आकर्षण प्राप्त होता है, रुचि रस प्राप्त होता है, तब उसका भौतिक रस अपने आप नष्ट हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को उत्तम वस्तु दी जाए तो निकृष्ट वस्तु को भला क्यों स्पर्श करेगा। अगर आपको शुद्ध घी का हलवा प्राप्त हो रहा है तो आप फिर कोई अन्य निम्न वस्तुओं को स्पर्श क्यों करेंगे, है ना, क्यों छुएंगे उसको। अगर आपको उत्तम सुख प्राप्त हो रहा है तो आपको निकृष्ट सुख में क्यों फंसेंगे। विषयाभिनिवर्तन्ते, भगवान भगवद गीता में कहते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान के चरणों में से निकला हुआ अमृत प्राप्त होता है, इसलिए उनका स्वाभाविक रूप से भौतिक आकर्षण नष्ट हो जाता है स्वाभाविक रूप से। उनको कोई विशेष तपस्या नहीं करनी पड़ती, कोई विशेष अनुष्ठान, कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। हाँ, यदि हम इस आकर्षण को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तब हमारा जीवन संघर्ष वाला हो सकता है। लेकिन यह आकर्षण बड़ा आसान है। अगर कोई भक्त, अगर कोई व्यक्ति किसी वैष्णव के शरण में चला जाए, किसी वैष्णव की कृपा प्राप्त कर ले, किसी वैष्णव की संगति का लाभ उसको मिल जाए, तो उसका भौतिक आकर्षण अपने आप नष्ट हो जाएगा। उसको पता भी नहीं पड़ेगा कब नष्ट हो गया। लेकिन अब उसकी अपनी इच्छा होनी चाहिए कि मैं इसको नष्ट करना चाहता हूं। तब चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को यह भी बताया कि जब पूर्ण रूप से हृदय स्वच्छ हो जाता है इस कलुषित काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य से, जब अन्य अभिलाषिता सब अन्य इच्छाओं से हृदय स्वच्छ होता है, तब प्रेम प्रकाशित हो सकता है। और यह प्रेम क्रमशः आगे बढ़ करके पांच प्रकार के दिव्य रसों का आस्वादन करता है। ऐसे मुख्य पांच है, अन्य बहुत सारे भक्ति के वैज्ञानिक संदेश उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति रसावृत के ग्रंथ में जो रूप गोस्वामी बताए हैं वो सारे संदेश चैतन्य महाप्रभु समझाए थे रूप गोस्वामी को। लेकिन उसमें से जो पांच मुख्य रस हैं जिसकी चर्चा हम कल सुबह किया था, वह है शांत रस। शांत रस में पेड़ पौधे पक्षियां पशु इत्यादि सब भगवान के आकर्षित होते हैं भगवान से। जब उसकी क्रमशः वृद्धि होती है उसके प्रेम की, तब वह दास्य रस को प्राप्त करता है। वह मानने लगता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और कृष्ण मेरे परम स्वामी है, मैं उनका दास। जैसे हनुमान जी जन्म जन्म यही इच्छा किया कि मैं हमेशा आपका दास होना, चित्रक पत्रक ये भगवान के दासों में से निरंतर उनकी सेवा करते। जब इस प्रेम की अभिवृद्धि होती है तब वह सख्य रस प्राप्त करता है। सख्य रस में वो भगवान के साथ मित्रतापूर्वक सुबल इत्यादि जो व्यवहार किए, कभी खेल खेलते हैं, कभी पूरा दिन व्यतीत करते हैं बारह वनों में, तो यह सख्य रस का प्रेम प्राप्त होता है। तत्पश्चात उसमें वृद्धि होने पर वात्सल्य रस किसी को प्राप्त हो सकता है। वात्सल्य रस में भक्त नंद महाराज यशोदा माता उनकी सेवा करता है या उनके जैसा भाव अनुकूल करता है। और उसके बाद सबसे उत्तम रस जो है गोपियों के द्वारा भगवान को दिया गया प्रेम। तो यह सारे रस की चर्चा चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताए, अनेक नियम बताए, लेकिन उसमें से चैतन्य महाप्रभु बताए कि पांच चीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति के कई अंग है, 64 अंगों की चर्चा की, उसमें से पांच अंग जो है वो सबसे मुख्य बताए। पांच अंग में से कौन से पांच अंग? एक तो है सबसे पहले हरि नाम, भगवान के नाम का जप करना प्रतिदिन, भागवत सेवन, प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम को पढ़ना, भगवान के ग्रंथों को पढ़ना प्रतिदिन, भक्तों का संगति, ये तीसरा अंग है कि भक्तों की संगति में रहना, भक्त का संग प्राप्त करना, अगर नहीं मिल रहा है तो ढूंढो कहाँ से हमें भक्तों की संगति प्राप्त हो सकती, ऐसे भक्तों की संगति प्राप्त करना जो भक्त हमारी आध्यात्मिक चेतना को उजागर कर सके,
ऐसे भक्तों की संगत करना जो स्वयं अच्छा आचरण प्रदर्शित कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने बताया अर्चा विग्रहों की पूजा, श्री मूर्ति सेवन, भगवान के अर्चा विग्रह की प्रतिदिन पूजा करना, उनकी मंगला आरती, उनका श्रृंगार, उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना, उनको विश्राम देना, उनके लिए बड़े बड़े उत्सव का आयोजन करना। जैसे आज आप लोगों ने यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का अभिषेक किया पूर्णिता का, और बड़ा उत्सव का आयोजन किया, उनके लिए अन्नकूट का व्यवस्था किया। यह उस पांच अंग में से एक अंग है। और पांचवा चैतन्य महाप्रभु बताया भगवान के धाम में रहना। अभी आप कहेंगे कि हम भगवान के धाम में रहने कैसे जाए, हम तो अहमदाबाद या गांधीनगर में रहने वाले लोग हैं। जैसे हम कल ही बताए, परसों बताए थे शायद, कल या परसों, कि अद्वैताचार्य को जब चैतन्य महाप्रभु पूछा कि ये वृंदावन कैसे है, तो अद्वैताचार्य कहा जहाँ आप हैं वही वृंदावन है। सीधी सी बात है, जहाँ कृष्ण है वही वृंदावन है। अर्थात जहां पर आप श्रवणम कीर्तन कर रहे हो, जहां पर कीर्तन हो रहा है भगवान के दिव्य नामों का, जहां पर भागवत पढ़ा जा रहा है, जहां पर भगवान के विग्रह की पूजा हो रही है, वही तो वृंदावन धाम। तो वृंदावन कोई अलग कोई स्थान नहीं है। वृंदावन धाम में जो चीज हो रही है, अगर वो चीज आप यहाँ पर करते हो तो यह भी वृंदावन धाम हो सकता है। वृंदावन धाम का अर्थ होता है कृष्ण को छोड़कर के और किसी चीज की इच्छा या अभिलाषा नहीं करना, यह वृंदावन धाम का स्वभाव है। और यही कार्य अगर आप अपने घर पे करते हो तो आपका घर भी वृंदावन समान हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने जब भक्ति के इस अलग अलग अंगों की चर्चा की, प्रेम की चर्चा की, और आध्यात्मिक उन्नति किस तरह से हो सकती है उसकी चर्चा की, और किस तरह से नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ युग धर्म है उसकी चर्चा की, इस तरह से अनेक विषयों पर लोगों गोस्वामी को यह संदेश दिया। उसी तरह से उन्होंने सनातन गोस्वामी को भी संदेश दिया। सनातन गोस्वामी को भी कहा कि हजारों 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 जीव इस संसार में भटक रहे हैं, हजारों जीव, लाखों करोड़ों अन्य भटक। उन्होंने बताया कि कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, कृष्ण को भूल करके जीव भोगवांछा करता है, भगवान को भूल जाता है और फिर चाहता है कि मैं ये भोग करूंगा ये भोग करूंगा, निकटस्थ माया तारे झटपट याद हुए और माया उसके पास आकर के उसको लात मारती है और दुखी होता रहता है, उसको धोखा मिलता है हर जगह पर, सुख उसको कहीं पर भी नहीं मिलता और इस सुख की प्राप्ति के लिए वो जन्मों जन्म तक भटकता रहता है, जब तक वो ये नहीं समझ लेता कि उसका स्वरूप क्या है, वह कृष्ण का दास है, तब तक उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तथा शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास होना। जैसे पानी का स्वभाव है बह जाना, जैसे नींबू का स्वभाव है खट्टापन, जैसे मिर्ची का स्वभाव है तीखापन, इस तरह से आत्मा का स्वभाव है सेवा करना, कृष्ण की सेवा करना। और जिस समय हम यह सेवा की जो वृत्ति है, जो भावना है, उसको गलत जगह प्रयोग करने लगते हैं, समाज की सेवा, लोगों की सेवा, संसार की सेवा, परिवार की सेवा, देश की सेवा, तब हम ये भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है।
और आत्मा का कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। और क्योंकि हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए सारी सेवाओं से भी मन संतुष्ट नहीं होता है कभी। भगवान श्रीमद् भागवत में बताया है, सवई धर्म परोपुंसान ये तो भक्ति अधोक्षजे। सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म वह है जो धर्म आपको भगवान को प्रेम करना सिखाए, ये तो भक्ति अधोक्षजे। अहैतुकी अप्रतिहता, और ये भक्ति कैसी होनी चाहिए? बिना किसी इच्छा से, स्वार्थ से नहीं। अहैतुकी, कोई हेतु नहीं होना चाहिए उसके पीछे। और अप्रतिहता, निरंतर चलने वाली भक्ति, आज हुई कल नहीं हुई, इस तरह से। अब अहैतुकी अप्रतिहता यजात्मा सु प्रसिद्धति, इस तरह से भक्त जो है उसका हृदय, आत्मा जो है उसका हृदय पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है, सुप्रसिद्ध थी, परम संतोष प्राप्त कर सकता है। ये तभी हो सकता है जब हम कृष्ण के सेवा करना शुरू करें, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम उनके नित्य दास हैं। जब तक हम हमारी अपनी अवस्था में स्थिर नहीं होते, हमारे अपने स्वरूप में स्थिर नहीं होते, तब तक हम परेशान रहेंगे, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे प्रकृति के साथ। भ्रामेण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जीव जो है वो निरंतर प्रकृति के साथ संघर्ष करता रहता है। क्यों? सुखी होने के लिए, भगवान बनने के लिए, जो हो ही नहीं सकता कभी। फिर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया किस तरह से जीव भगवान को भूल करके संसार में गिरता है, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। हमें एक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है क्या? हम चाहे तो कृष्ण की शरण में जा सकते हैं, और अगर चाहे तो हम माया की शरण में जा सकते हैं। ये दो में से कोई भी एक ही विकल्प हम स्वीकार कर सकते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं। और हम जब जब हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तब तक हम रोते हैं, तब तक हम दुखी होते हैं, तब तक हमें कष्ट होता है। और जब जब हम उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कृष्ण की शरण में जाते हैं, वह कार्य आपको अनेक अनेक कष्टों से बचा देता है। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जब स्वतंत्रता का दुरुपयोग कोई करते हैं, तो फिर प्रकृति के नियम उसको सजा करते हैं, प्रकृति के तीन गुण उसको रस्सी से बांध देते हैं, और वो बंधा हुआ जीव जैसे कोई कैदी की भांति जेल में सड़ रहा है। और हम सब उसी प्रकार के कैदी हैं जो जेल में सड़ रहे हैं, और हमें अनेक अनेक प्रकार के विपदाओं का सामना करना पड़ता है, अनेक अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। कभी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, कभी धन चला जाता है, अनेक अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि माया हमें गेंद की भांति उछाल उछाल कर फेंक रही है, कभी हमें इधर से टॉस करते, कभी उधर से टॉस करते, और ये हमारी दुखद अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि हम एक कैदी की भांति भगवान को भूल करके भोग भोगना चाहते हैं। और ये सृष्टि जो है, ये संसार जो है, इसकी तुलना की गई है एक कैदखाने की तरह, जेल की तरह। इसमें अगर किसी की भौतिक सुविधाएं अधिक होती है, किसी के पास धन अधिक है, ऐश्वर्य अधिक है, बंगलो है, अच्छी गाड़ी है, इत्यादि है, तो उसका वर्णन है केवल इतना ही है कि उसकी जेल थोड़ी ऊपर अच्छी वाली जेल है। लेकिन जेल तो जेल ही है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अस्पताल में जाते हो
तो आपको कोई अच्छा बिस्तर देगा, कोई अच्छा कमरा देगा, कोई अच्छा सुविधा देगा, लेकिन आप तो अस्पताल में ही हो ना, कि आप वहां पर सुख से जीवन जीते हो। कोई ऐसा सोचता है कि मैं अस्पताल में, अस्पताल के डिलक्स रूम में लाइफ बिताना चाहता हूं, वैसा सोचता है नहीं। तो चाहे आप कितने भी हम भौतिक रूप से संपन्न हो जाए, किंतु फिर भी हम हाथ पर हमारे जो है वो जकड़े हुए जंजीरों से, तीन गुणों की जंजीरों से, माया के आकर्षण से। और ये जंजीर तभी निकल सकती है जब जिस ऐसा कोई व्यक्ति हमारे पास आता है जिसके हाथ में जंजीरें नहीं लगी हो। और ऐसा व्यक्ति ही हमारी जंजीरें खोल सकता है। और वो व्यक्ति कौन है? वह भगवान का भक्त, वह आपकी जंजीरें खोल सकता है, वह आपकी आंखें खोल सकता है। ज्ञान अतिमेरांदस्य ज्ञानांजन श्राक, हमारी आंखों को खोल करके हमें अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन देते हैं। तिमिरांदस्य ज्ञानांजन चक्षु उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बात हमें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हम इसके पालन करने में फिर भी हिचके जाते हैं। ये बात का श्रवण करते समय हमारे हृदय में जो चेतना है सोई हुई, वो कभी जागृत भी हो जाती है, लेकिन फिर वापिस हम उसी वातावरण में चले जाते हैं जिस वातावरण में हमारी इस चेतना को ढक दिया जाता है, हमारे हमें इस चेतना को सुला दिया जाता है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भक्तों की संगति करो, भक्तों की संगति करो, ताकि आपकी चेतना को कोई सोने ही नहीं देगा। अगर ये चेतना आपकी सोएगी नहीं तो आपकी प्रगति निश्चित है, तो आप अवश्य आगे बढ़ेंगे कृष्ण भक्ति में। फिर चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को तीन प्रकार के भगवान के स्वरूप के विषय में बताया कि भगवान का एक स्वरूप जो सबसे प्राथमिक है वो है ब्रह्म स्वरूप, भगवान का दिव्य प्रकाश। फिर उससे आगे बढ़कर है भगवान का परमात्मा स्वरूप जो सबके हृदय में विराजमान है, उसकी उपासना करते हैं योगी लोग, ज्ञानी लोग। लेकिन जो सबसे उत्तम साक्षात्कार है भगवान का, वो है भगवत साक्षात्कार, भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार। और इनका सेवा करते हैं भगवान के भक्त वैष्णव। और ये वैष्णव में तीन प्रकार की श्रेणियां होती है। एक श्रेणी होती है कि जो कनिष्ठ होते हैं, जो भगवान के भक्तों को सम्मान देना नहीं जानते, केवल वो विग्रहों को ही सम्मान दे सकते, भगवान की मूर्ति को ही सम्मान दे सकते हैं, वैष्णव को सम्मान कैसे देना ये नहीं जानते, ये कनिष्ठ होते हैं, उनकी मन, उनका बुद्धि, उनका मन स्थिर नहीं होता। लेकिन धीरे 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 जब कृष्ण भक्ति में कोई आगे विकसित होता है, भक्तों की संगति करता है और आगे बढ़ने की इच्छा से सभी नियमों का पालन करके आगे बढ़ता है, तब वह मध्यम अधिकारी बन सकता है, तब वह मध्यम भक्ति को प्राप्त करता है। वह मध्यम भक्त सोचता है, वो चार चीज करता है, भगवान से प्रेम करता है, प्रेम और मैत्री, भक्तों से मैत्री करता है, भगवान के भक्तों के साथ मित्रता रखता है, और अज्ञानी लोगों को कृपा करता है, दया करता है, और भगवान के द्वेषी लोगों से दूर चला जाता है। यह भक्त मध्यम माना जाता है। और उससे भी उत्तम भक्त वो माना जाता है, इससे भी श्रेष्ठ, जो सभी जीवात्माओं को भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ, आगे बढ़ा हुआ भक्त मानता है। वह व्यक्ति वैसा होता है कि जो अपने आप को छोड़ करके सभी को आदर देता है। वह सोचता है कि केवल मैं ही भगवान का भक्त नहीं बन पाया इतने सालों के बाद भी, बाकी सारे भक्त भगवान की सेवा में लगे हैं, सारे जीव प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करते हैं। वह अपने आप को सबसे नीच, सबसे अधम मानता है, सबसे पापी, सबसे निकृष्ट मानता है, वास्तव में सबसे उत्तम कोटि का भक्त होता है। तो इस तरह से तीन भक्तों की श्रेणी बताई चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को। इसके अलावा अनेक अनेक विषयों की चर्चा की गई। श्री प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए जितने भी उपदेश हैं रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, सार्वभौम भट्टाचार्य को, जितने भी उपदेश हैं, वो सारे उपदेशों का संकलन करके एक ग्रंथ प्रकाशित किया था। इस ग्रंथ का नाम है चैतन्य महाप्रभु के दिव्य उपदेश। इस ग्रंथ में सभी इसी उपदेशों की चर्चा की गई है विस्तार से। जब चैतन्य महाप्रभु इस तरह से रूप सनातन गोस्वामी का उनको उपदेश देकर के आगे बढ़े, जगन्नाथपुरी जाना चाहते थे लेकिन रास्ते में फिर से वाराणसी पहुंचे थे, और वाराणसी में आपको पता है कि मायावादी सन्यासियों ने चैतन्य महाप्रभु की निंदा की थी। उन सबका नेता था प्रकाश आनंद सरस्वती, और उन भक्तों ने कहा था कि प्रभु या तो प्रकाश आनंद सरस्वती के सभी अनुयायियों को, उनको सबको भक्त बना दो, कृष्ण प्रेम दे दो, या फिर हमें यह स्थान को छोड़ने का आदेश दे दो, या तो फिर हमें मृत्युदंड दे, लेकिन हम आपकी निंदा नहीं सुन सकते। भगवान के भक्तों की निंदा सुनना मृत्यु के बराबर है, कभी सुनना नहीं चाहिए। तो इस बार चैतन्य महाप्रभु जब आए तो एक ब्राह्मण उसने न्योता दिया था सभी सन्यासियों को वार्तालाप करने के लिए, भोजन के लिए आमंत्रण दिया था। तो प्रकाश आनंद सरस्वती उन सबके नेता थे, और उन सबके साथ बड़े प्रखर से प्रखर मायावादी सन्यासी, बड़े विद्वान, संस्कृत के बड़े महापंडित, ये सारे नेता सन्यासी इकट्ठा हुए एक साथ, और चैतन्य महाप्रभु को भी इसमें आमंत्रण दिया गया, आप भी आइए। चैतन्य महाप्रभु सन्यास सब सन्यासियों के सभा के द्वार में आए, द्वार तक आए, और हर एक घर के द्वार पर, पहले के समय में ऐसा सिस्टम था कि चरम धोने का, पांव धोने का स्थान होता था। घर के अंदर प्रवेश करने से पहले पांव धोकर के अंदर प्रवेश किया जाता था, घर में प्रवेश करने का यही तरीका होता था। आजकल को लोग घर में भी शूज पहन के घूमते हैं, लेकिन पहले के समय में घर को मंदिर जैसा रखा जाता था, और चरण धोकर के अंदर जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु वो जो स्थान था जहाँ पर चरण धोए जाते हैं द्वार के बाहर, द्वार के एंट्रेंस में, घर के एंट्रेंस में, तो उसी स्थान पर जाकर बैठ गए चैतन्य महाप्रभु, और उनका शरीर से इतना तेज, इतना प्रकाश निकल रहा था। तो प्रकाश आनंद सरस्वती कहे, आप वहां पर क्यों बैठे हो, हमारे बीच में आओ, हम सबके साथ रहो। स्वयं गए चैतन्य महाप्रभु को हाथ से स्पर्श करके उनको हाथ से अपने पास बिठा दिया सबके बीच में। प्रकाश आनंद सरस्वती ने कहा कि आप इतने तेजस्वी हो, इतने विद्वान हो, आपके मुख पे इतना सूर्य जैसा, अनेक अनेक सूर्य जैसे तेज है, आप तो साक्षात नारायण दिख रहे हो, आप हमारे ही संप्रदाय के सन्यासी हो, किंतु आप इस भावों की भांति, पागल की भांति एक कीर्तन और नृत्य क्यों करते हो, सन्यासी हो, हमारे साथ वेद वेदांत की चर्चा क्यों नहीं करते, सन्यासी का तो यह धर्म है वेद की चर्चा करना, और हम सबका संग नहीं करके तुम नाचते हो, गाते हो, कीर्तन करते हो, ऐसा क्यों? चैतन्य महाप्रभु बताए, गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला साक्षी,
मेरे गुरु ने मुझे देखा जब मैं दीक्षा लिया था, संन्यास लिया था, तो मेरे गुरु जी ने मुझे देखा और कहा, बेटा तू मूर्ख है एक नंबर का। गुरु मोरे मूर्ख देख कर राजा, और ये वेद इत्यादि वेदांत वगैरह तेरे बस की बात नहीं है, ये सब तू नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए तू कृष्ण नाम जप कर यही सभी धर्मों का सार बस यही कर दो। फिर मैं उस नाम का जप करना शुरू किया और कुछ समय के पश्चात जैसे नाम का उच्चारण शुरू किया तो मैं तो रोने लगा, मैं तो हंसने लगा, जमीन पे लोटपोट होने लगा, मेरे रोए खड़े हो गए, मेरे शरीर से दिव्य लक्षण प्रकट होने लगे। तो मैं चला गया गुरु के पास, गुरु को पूछने के लिए कि बा मंत्र दिला कौसा है, कि बात आरभ कौन सा मंत्र दिया गुरु जी आपने, ऐसा क्या चमत्कार कर दिया आपने, उसका बल क्या है, जपी से जपी था भैर पागल, उसका जप करते करते तो जैसे मैं पागल था बन गया हूं, ऐसा कौन सा जादुई मंत्र दे दिया आपने। तो मेरे गुरु ने कहा, बेटा तुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रहा है, यह जीवन की चरम सीमा है, यह सभी पुरुषार्थ है, सबसे उत्तम पुरुषार्थ है, परम पंचम पुरुषार्थ है, ये तुमने प्राप्त किया है और इससे अधिक सफलता किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को बड़ा तुच्छ विनम्र मूर्ख बताया सब सन्यासियों के सामने। तो बोले आप की बात सही है, हम मानते हैं कि कृष्ण नाम जप करना ये सब अच्छी बात है, लेकिन वेदांत की चर्चा करने में क्या समस्या है। तो महाप्रभु बोलते, थोड़ा बहुत वेदांत तो मैं भी जानता हूं। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनसे चर्चा शुरू की और उनके सारे तर्कों को खंडित कर दिया, प्रखंड सन्यासी, प्रचर मायावादी, प्रकाशार सरस्वती सबसे बड़ा नेता, उसके सारे तर्क का खंडन कर दिया। और तब प्रकाश हमें समझ गया कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, यह व्यक्ति स्वयं नारायण है। और प्रकाश आनंद और उनके साथी जितने भी साथी थे उन सबको चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम का दान दिया। सारे वाराणसी में हल्ला मच गया कि महान प्रकाश आनंद सरस्वती वैष्णव बन गया, शुद्ध वैष्णव बन गया, और वो कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, हरिवो हरिवो हरिवो, सारा वाराणसी कृष्ण भक्ति में लीन हो गया। सारा वाराणसी प्रकाश आनंद के भक्त बनते ही सारा वाराणसी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर ली, सब भगवान के चरणों में समर्पित हुए। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से अलग अलग लीलाएं की 6 साल तक निरंतर, बाद में अंत के 18 साल उन्होंने व्यतीत किए जगन्नाथपुरी धाम में। जगन्नाथपुरी धाम में चैतन्य महाप्रभु ने अनेक लीलाएं की थी, वहां पर रहते हुए अनेक अनेक भक्त को शक्ति, विशेष कृपा, विशेष शक्ति देकर के अलग अलग स्थान पर भेजा। जैसे नित्यानंद प्रभु को कहा कि तुम चले जाओ बैंगलोर वापिस और तुम वहां कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। इस तरह से सब भक्तों को अलग अलग स्थान दिया कि तुम इधर चले जाओ, तुम उस स्थान पर चले जाओ और वहां पर जाकर ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, क्योंकि यही चैतन्य महाप्रभु का जीवन का उद्देश्य था, यही भगवान का अवतार का कारण था। चैतन्य महाप्रभु के जो प्रसिद्ध भक्त थे जगन्नाथपुरी में, उनमें से प्रमुख भक्तों में से थे स्वरूप दामोदर, रामानंद रॉय, सार्वभौम भट्टाचार्य, कदाधर पंडित, परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, ये सारे प्रमुख भगवान के भक्त थे, वक्रेश्वर पंडित। तो ये निरंतर चैतन्य महाप्रभु की सेवा में संलग्न रहते थे। लेकिन उस समय एक ऐसे भक्त का आगमन हुआ था, जो भक्त चैतन्य महाप्रभु को एक बार मिला था शांतिपुर में, उस भक्त का नाम था रघुनाथ दास। रघुनाथ दास गोस्वामी इकलौते बेटे थे अपने फैमिली में। उनके पिता का नाम था गोवर्धन मजुमदार, उनके भाई गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार, ये दो बड़े लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, और उनके पास बहुत संपत्ति, बहुत संपत्ति। चैतन्य चरितामृत के ग्रंथकार लिखते हैं कि उस समय उनकी संपत्ति लाखों करोड़ों रुपए थी, उस समय की 500 साल पहले, उस समय आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस समय कि उतना धन कितना होगा। 12 लाख रुपए तो टैक्स कलेक्ट करते थे उस समय, टैक्स कलेक्टर थे, उनको सरकार से उनको मिला था ये कुछ उसी के आसपास का कुछ रकम था। तो इन दोनों के बीच में एकमात्र बेटा था रघुनाथ, और ये रघुनाथ पहले से ही चैतन्य महाप्रभु के शरणागत था, उनका भक्त था। एक्चुअली होता था ऐसा कि बलदेव करके बलदेव बलराम पंडित या बलदेव आचार्य ऐसा कुछ नाम था जो उनके फैमिली प्रिस्ट थे, वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे और उनके घर और हरिदास ठाकुर के मित्र थे, और इसलिए हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार के घर पर हरिदास ठाकुर प्रायः आते रहते थे, और हरिदास ठाकुर के मुख से निरंतर चैतन्य महाप्रभु का महिमा रघुनाथ बचपन से सुनते आए थे। रघुनाथ का महिमा सुनकर के रघुनाथ ने महिमा सुना तो उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु के चरण में अपना जीवन समर्पण करें। रघुनाथ दास गोस्वामी जब शांतिपुर में मिले थे चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या कहा था, तुम वापस चले जाओ, घर पे रहो, उचित समय आने पर मैं तुम्हें बुला लूंगा, अभी तुम चले जाओ। उसके बाद बहुत प्रयास किए कि वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाए, उनका किसी में मन नहीं था। रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार राम के पानीहाटी में गए थे, पानीहाटी का एक स्थान है, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु और उनके सभी जो भक्त है वो सब इकट्ठे हुए थे। रघुनाथ वहाँ पर पधारे तो नित्यानंद ने उनको कहा, अरे अरे चोर इधर आ, इधर आ। बोले मैं चोर कैसे, वो तो बड़े धनवान थे उस समय, तो किस तरह के मैं चोर। उन्होंने कहा तुम चोर नहीं तो और क्या हो, चैतन्य महाप्रभु तुम्हारी संपत्ति नहीं है, चैतन्य महाप्रभु मेरी संपत्ति है, नित्यानंद प्रभु बताए, और तुम चाहते हो उस चैतन्य महाप्रभु को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी परमिशन तो ली भी नहीं, तुमने मुझे पूछा भी नहीं कि क्या मैं चैतन्य महाप्रभु को मेरे हृदय में स्थापित कर सकता हूं, तुम चोर, उसका दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा, बोले यहाँ पर दही चीड़ा दूध और पोहा का कस्टर्ड बनाओ, सबको खिलाओ, ये तुम्हारा दंड है, सबका प्रसाद खिलाओ। तो तुरंत रघुनाथ दास ने पूरा अरेंजमेंट करके बड़ा उत्सव का आयोजन किया। हालांकि नित्यानंद प्रभु बड़े कृपालु थे और रघुनाथ दास को बहुत प्रेम करते थे। रघुनाथ दास के लिए पूरा फेस्टिवल हो गया, तब से नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, बहुत जल्द तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। तो उनकी अभिलाषा क्या थी, चैतन्य महाप्रभु के लिए अपने जीवन संन्यास लेना, ये सब गृहस्थी को त्याग। जब रघुनाथ दास गोस्वामी घर पे गए तो कई बार प्रयास करते थे कि मैं भाग जाऊं, कई बार प्रयास करते थे, तो उनके माता पिता ने देखा कि इसको अभी ठीक करना है तो एक सुंदर कन्या से शादी करा देना पड़ेगा, तब जाके घर पर रहेगा।
लेकिन सुंदर कन्या, इतनी सुंदर कन्या ढूंढ कर लेकर भी आए, उसका शादी भी करवा, लेकिन उसमें फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि नहीं थी उसमें। 4,000 बॉडीगार्ड रखे थे उसके आसपास, भाग में जाए रघुनाथ दास, लेकिन कितने समय रहेंगे बॉडीगार्ड हमेशा। फिर उसके पिता ने उसके माता को कहा, भाई ये सुंदर तुम्हारी जो बहू है, इतनी सुंदर अप्सरा जैसी पत्नी, वो उसके मन को आकर्षित नहीं कर पाए, उसको रोक नहीं पा सकती, तो क्या तुम्हारे बॉडीगार्ड उसको रोक पाएंगे? उसको कोई रोक नहीं सकता, फिर भी प्रयास करते थे कि वो भाग ना जाए। एक बार वो खिड़की में से कूदना चाहते थे मध्य रात में, वो देखा कि अभी एक अच्छा अवसर है, यहाँ से मैं भाग सकता हूँ। और जैसे ही वो खिड़की के खिड़की में से बाहर निकलना चाहते थे, किसी ने उनको पीछे से बुलाया, तो वो तुरंत देखा पीछे मुड़कर कौन है, उनके पिताजी। कहा बेटा क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो उनके पिताजी ने कहा खिड़की बंद कर दो, चलो अंदर। लेकिन रघुनाथ को कितने देर तक रोक सके? उनके जो पुरोहित थे फैमिली प्रिस्ट, उन्होंने रघुनाथ दास को सहायता किया निकल जाने में। उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ रघुनाथ, मैं तुम्हारे पिताजी को उत्तर दे दूंगा। और रघुनाथ चले गए तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ करके जगन्नाथपुरी की ओर। और जगन्नाथपुरी में गए तो पिताजी ने पीछे से कुछ सैनिकों को भेजा धन के साथ, बोले वो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, इसको कुछ व्यवस्था करके दो। तो जगन्नाथपुरी में उनके लिए भोजन इत्यादि का सब सामान वगैरह सब भेजा। तो जब धन आ रहा था, रघुनाथ दास गोस्वामी सबको आमंत्रित किया, पहले तो चैतन्य महाप्रभु के चरण में गए, चैतन्य महाप्रभु को स्वागत किया, आओ हम सब साथ भक्तों के साथ रहो। लेकिन बाद में दूसरे दिन न्यौता मिला चैतन्य महाप्रभु और सब भक्तों को कि रघुनाथ दास ने बड़ा भोज का आयोजन किया है, फिस्ट का आयोजन किया, सब लोग पधारो। एक दो दिन तक ये चला, सुबह शाम बड़ा बड़ा फिस्ट, अन्नकूट जैसा ऐसा बड़ा फिस्ट। बाद में अचानक न्यौता बंद हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप उस उनके सेक्रेटरी से स्वरूप दाम उनको पूछा क्या हो गया, बंद हो गया फिस्ट, नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं रघुनाथ? तो स्वरूप दामोदर ने कहा, रघुनाथ ने सोचा कि जब मैं सब कुछ ही छोड़ के आया हूं तो फिर मैं पिता के धन का उपयोग क्यों करूं, इसलिए उसने पिताजी से धन लेना बंद कर दिया, नहीं लेना है धन। तो आप कैसे संभालना, वो भोजन कैसे करता है, उसका निर्वाह कैसे होता है? तो कहा कि वो अभी भिक्षा मांगते हैं अलग अलग स्थान पर, विशेष करके वो बैठते हैं जगन्नाथ भगवान के मंदिर के बाहर, बहुत सारे जो भिखारी बैठे होते हैं उनके साथ बैठ गए, और वहां पर कोई अगर आता है जाता है उनको धन देता है, भोजन देता है, बस उससे उसका काम चल जाता है, उस तरह से जीवन। चैतन्य महाप्रभु बताया कि बड़ा वैराग्य है, ये इतना रॉयल लाइफ जीते थे रघुनाथ दास गोस्वामी कि उनके लिए प्रतिदिन पूरा बाथरूम फूलों से सजाया जाता था, प्रतिदिन सुबह तब स्नान करने जाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे राजकुमार थे। उनके बिस्तर से उनके बाथरूम तक नहाने का पूरा मार्ग जो था वो फूलों से डेकोरेट किया जाता था, ऐसे बड़े राजकुमार थे। और ये इतना सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके एक भिखारी की तरह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहे। तो एक दो दिन के बाद चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वो तो अभी भिक्षा भी नहीं मांग रहे। तब फिर स्वरूप दामोदर को पूछा, क्या हो गया रघुनाथ को, आजकल मैं उसको देखता नहीं, वो भिक्षा मांग नहीं रहे, और उसका निर्वाह कैसे होता है? तो बोले कि रघुनाथ दास सोच रहे हैं, बोले ये तो वेश्या जैसा है, बोले कोई आएगा वो देगा, वो दूसरे को देगा, ये आएगा ये देगा, कुछ खाने के लिए तो ये मन हमेशा उसमें पड़ा रहता है कि ये व्यक्ति आएगा, ये कुछ खाने का देगा, ये वो जाएगा, वो खाने को देगा, और ये धंधा बेकार छोड़ दिया इस तरह से मैंने। लेकिन तो फिर वो अभी अपना जीवन कैसे निर्वाह करते हैं? तो जगन्नाथ भगवान को जो भोग लगता है जगन्नाथपुरी में, उसमें से जो चावल वेस्ट बचे जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं मंदिर के पिछवाड़े पे, उस चावल को गाय वगैरह पशु लोग खाते हैं। उस चावल के ढेर में से रघुनाथ दास कुछ चावल उठा करके उसको पानी से धो करके उसमें से थोड़ा सा नमक डाल के खाता है। यही वो इस तरह से अपने जीवन व्यतीत करता है। और चैतन्य महाप्रभु बड़े अच्छा उसका वैराग्य है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और चैतन्य महाप्रभु एक दिन चले गए उसी स्थान पर, और रघुनाथ दास के हाथ में जो चावल का कटोरी था वो तुरंत उन्होंने खींच लिया पात्र और खाने लगे वही रईस। रघुनाथ बोले, नहीं प्रभु ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। तो महाप्रभु बोले, रोज इतना अच्छा अच्छा फिश खाते हो रघुनाथ, और मुझे आमंत्रण भी नहीं देते, मुझे बुलाते भी नहीं हो, इतना स्वादिष्ट प्रसाद तुम खाते हो प्रतिदिन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत प्यार करते रघुनाथ दास गोस्वामी को, इतना प्यार करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी को कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ये तुम्हारी संपत्ति रहेगी, अब तुम इसका संभाल करो। इसलिए उसका नाम हो गया स्वरूप रघु, स्वरूप दामोदर गोस्वामी का रघुनाथ दास। और फिर ये रघुनाथ दास को चैतन्य महाप्रभु बताए, तुम चले जाओ गोवर्धन, और गोवर्धन में जाके वहां के लीला स्थलियों की स्थापना करो। ऐसा ही आदेश उन्होंने दिया था रूप सनातन गोस्वामी को कि वहां वृंदावन में जाओ, वहां पर तुम भक्ति के विषय ग्रंथों का निर्माण करो, और वृंदावन में भगवान की जितनी लीला स्थली है वो सारी लीला स्थली का उजागर करो, उसको स्थापित करो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इन छह गोस्वामियों को दिया गया था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। आज जो हमें गोवर्धन का महिमा ज्ञात होता है, भक्ति का जो महिमा प्राप्त होता है, गिरी गोवर्धन का जो महिमा मिल रहा है, राधा श्यामकुंड का जो महिमा प्राप्त हो रहा है, ये सभी छह गोस्वामियों की कृपा से प्राप्त हो रहा है। अगर हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये छह गोस्वामी हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये छह गोस्वामी की शरण लेने से हमें चैतन्य की भक्ति प्राप्त हो सकती है। चरण से भी भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे हुए ये अभिलाष। ये छह गोस्वामियों की शरण में रहकर के मैं भक्तों का संग प्राप्त करना चाहता हूँ, बस उनके चरण की सेवा करना चाहता हूँ, जन्मे जन्मे मेरी यही अभिलाष और कोई अभिलाष नहीं। यही वास्तविक अभिलाषा होनी चाहिए, जन्मे जन्मे हुए यही अभिलाष और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। ये प्राप्त हो वो प्राप्त हो, नहीं क्या प्राप्त हो, ये छह गोस्वामियों की चरण की सेवा मुझे मिले और भक्तों का सम्मान मिले, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चैतन्य महाप्रभु के छह गोस्वामियों के साथ एक बड़े प्रिय भक्त जिसकी चर्चा हम अनेक बार कर चुके हैं, वह भक्त थे हरिदास ठाकुर। वह हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे प्रतिदिन। चैतन्य महाप्रभु हरिनाम के उच्चारण से, हरिनाम के प्रभाव से सारे संसार का उद्धार करना चाहते। एक बार उनको वासुदेव विप्र नाम के वासुदेव दत्त करके एक भक्त था चैतन्य महाप्रभु का, उसने कहा कि प्रभु आप मुझे एक आशीर्वाद दे सकते हो? चैतन्य महाप्रभु बताए, बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए आपको, महाप्रभु क्या चाहिए आपको? कहा कि मैं इन सबको संसार के लोग कष्टों में सड़ते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मेरी एक प्रार्थना है आपके चरणों में, क्या इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है उन सबके कर्मों का पापों का बोझा मुझे दे दो और सबको मुक्त करके कृष्ण प्रेम और उन सबकी ओर से मैं नरक में अनंत काल तक दुख भोग करूंगा, ऐसा विशाल हृदय था उनका। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तुम्हारी किसी भी इच्छा को अस्वीकार नहीं कर सकता, किंतु वासुदेव तुम सोचो अगर मैं सारे ब्रह्मांड के सभी जीवों के पाप का बोझ तुम्हारे सिर पर रख सकता हूँ और उन सबका उद्धार कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें नरक में क्यों भेजूं? लेकिन तुमने इच्छा प्रस्तुत की है तो इसी समय में सारे जीवों का तत्क्षण उद्धार करता हूँ और उन सबके कर्मों को जला करके भस्म कर देता हूँ। ऑन द स्पॉट चैतन्य महाप्रभु कृपा की और सारा ब्रह्मांड फिर हमारे जैसे लोगों से फिर बन गया। तो भगवान नाम की महिमा प्रस्थापित करना चाहते थे, इसका सबसे मुख्य साधक है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर शरीर बूढ़ा हो चुका था उनका, फिर भी नियमों का पालन करते थे। हरिदास ठाकुर जब जवानी में थे उस समय उनका जन्म हुआ था मुस्लिम खानदान में, लेकिन वो निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते थे और वो किसी को चैतन्य महाप्रभु के महान भक्तों का ये गुण होता है कि वो अपने आप को बड़ा नम्र मानते हैं। महाप्रभु भक्त का नहीं वैराग्य प्रधान, वो अपने आप को बहुत विनम्र मानते हैं और ये ब्रह्मा जी के अवतार थे हरिदास ठाकुर। वो कहते थे हमेशा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हालांकि ब्रह्मा जी के रूप में उन्होंने भगवान की लीला में ग्वाल बालों और सबकी चोरी करके उनको बड़ा कष्ट हुआ था, लेकिन वो अपराध की बोझ से इतने ग्रसित थे कि उन्होंने हरिदास के रूप में जन्म लिया मृच्छ कुल में और अपने आप को हमेशा कहते थे मैं सबसे नीच हूँ, मैं सबसे पापी हूँ, मैं सबसे अधम हूँ, हमेशा ऐसा कहते थे। हरिदास ठाकुर कई बार जब हरिनाम जप करते थे तो कई लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। शांतिपुर में जब द्वैताचार्य को मिले तो द्वैताचार्य ने पूलिया करके गांव है उनका स्थान रहने का व्यवस्था किया आप वहां रहो। ऐसा भी एक बार वहां पर एक सांप आया था, जिस स्थान पर हरिदास रहते थे वहां पर एक सांप रहता था पीछे, तो बहुत सारे लोग हरिदास के दर्शन के लिए आते थे, हरिदास से उपदेश सुनने आते थे, लेकिन वो सांप के कारण सब डर रहे थे। किसी भक्त ने आके कहा कि प्रभु आपके संग प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग चाहते हैं, किंतु आपके घर के आपके बाजू में जो पीछे सांप रहता है इसके भय से वो कोई आना नहीं चाहता, क्या करें, क्यों ना आप अपना स्थान बदल दो। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर बोले नहीं, कोई वो कुछ नहीं करता, वो सांप किसी को कष्ट नहीं देता, वो अपना काम करता है, कोई हमें मुझे कोई आपत्ति नहीं उससे, फिर भी अगर आप लोगों की इच्छा है तो मैं स्थान छोड़ के चला जाऊंगा, दूसरे स्थान में चला जाऊंगा। और जैसे ही हरिदास ठाकुर ने ये इच्छा प्रस्तुत की कि स्थान छोड़ के चले जाएंगे, तुरंत वो सांप जो था वो स्थान छोड़ के चला गया, क्योंकि हरिदास ठाकुर इतने तेजस्वी भक्त थे, बहुत विनम्र थे। यही भक्ति का लक्षण है, जब भक्त आगे बढ़ता है तो सबसे विनम्र हो जाता है, सबसे अधिक विनम्र हो जाता। तो वहां के एक राजा जो थे उसको कई लोगों ने शिकायत की थी कि हरिदास अनेक अनेक हिंदू अनेक अनेक मुस्लिमों को हिंदू बना रहा है। उस समय बड़ा ऐसा प्रभाव था कि अगर मुसलमान का अगर पानी भी अगर आपको गिर गया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, बड़ा प्रभाव था ये जातियों का। तो
तो महाप्रभु ये हरिदास ठाकुर कीर्तन हरिनाम जप कर रहे थे और राजा ने संदेश भिजवा दिया कि भाई ये तुम बंद करो नहीं तो हम तुम्हें दंड देंगे। तो हरिदास को बुलाया और कहा कि तुम क्यों करते हो ये सब काम, तुम इतना सौभाग्यशाली हो, इतने ऊंचे खानदान में तुम्हें जन्म मिला है मुस्लिम खानदान में, और तुम ये तुच्छ हिंदुओं का नाम जप करते हो, क्यों करते हो ये सब, छोड़ दो ये। हरिदास ठाकुर कहे बोले भगवान का नाम में और अल्लाह के नाम में क्या अंतर है, सेम ही तो है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तुम हजारों लाखों हिंदुओं को मार मार के मुसलमान बनाते हो और दो चार लोग मेरे पास आकर के हरि का नाम लेना शुरू कर दे तो उसमें तुम्हें क्या आपत्ति है। बोले नहीं ये सब नहीं चलेगा इधर, अगर तुम चाहते हो जीवित रहने के लिए तो बंद कर दो ये हरि नाम, नहीं तो तुम्हें कारागृह में डाल दिया जाएगा। बोले मैं तो बंद नहीं कर सकता हरि नाम। बोले इसको क्रैश कर लो, बंदी बना दिया। अभी हुआ ऐसा कि बंदी बनाने के बाद हरिदास ठाकुर के साथ बहुत सारे कैदी लोग थे और वहां पर हरिदास ठाकुर उपदेश देना शुरू कर दिया और वहां पर हरे कृष्ण मंत्र का जप करना शुरू कर दिया और वहां पर जप करने कैदी भी सब लोग बोलने लगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। सारे कैदी भक्त बन गए और वहां पर राजा के पास बोले इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। मंत्री ने कहा बोले क्यों, बोले जहाँ आपने भेजा उसको कैद खाने में वहाँ सारे कैदी को बदल दिया, सारे कैदी को हिंदू बना दिया और सब उसकी तरह नाच देगा इसको हटाओ यहाँ से, उसको दंड दो। तो हरिदास ठाकुर को बुलाया फिर से और तो अजीब किस्म के आदमी हो, मैं तुम्हें दंड दे रहा हूँ तुमने वहाँ पर भी अपना प्रचार कर दिया, अब मैं तुम्हें अंतिम वार्निंग देता हूँ कि तुम ये हरि नाम बंद कर दो नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा अगर तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, पाउडर बना दोगे मेरे शरीर का, हजारों हजारों टुकड़े बना दोगे मेरे शरीर के, लेकिन उस हरे टुकड़े में से एक ही ध्वनि आपको प्राप्त होगी क्या, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम, ये सारे टुकड़े यही उच्चारण करेंगे, यही नाम का जप करेंगे, मैं हरि नाम छोड़ नहीं सकता, अगर तुम चाहो तो तुम जो चाहे वो मुझे दंड दे सकते। ठीक है, राजा ने कहा इस काफी को ले जाओ और इसको 22 बाजार में पीट पीट कर इसका इसको मार डालो, कोड़े से पीटने का कहा आदेश, 22 बाजारों में कोड़े से पीटते पीटते घसीट के ले जाओ इसको। तो हरिदास ठाकुर को कोड़े से पीटते गए और निरंतर हरिदास ठाकुर भगवान का चिंतन करते हुए ध्यान करते हुए निरंतर यही उच्चार करते रहते थे क्या, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। और ये कोड़े से पिटाई हो ही रही थी और एक बाजार दूसरा बाजार तीसरा बाजार 22 बाजार के सब लोग बोलने लगे अरे भाई इसको क्यों मार रहे हो, बेचारा निर्दोष है, इसके बदले हमें मार दो, इसको मत मारो, इस तरह से कई लोगों ने कहा ये गलत हो रहा है ऐसा मत करो गलत हो रहा है, कई मुस्लिम लोग भी आके कहे कि हम किसी को कष्ट नहीं दे रहे तो इसको क्यों इतना मार रहे हो छोड़ दो। लेकिन आदेश था राजा का, पीटने वाले जो मल्ल थे बड़े बड़े वो मारते मारते थक गए, उनकी शक्ति नष्ट हो गई, फिर भी हरिदास ठाकुर वैसे के वैसे थे, उनका कुछ नहीं हुआ। जब अंतिम बाजार में उनकी पिटाई हो रही थी 22वें बाजार में, तब ये दोनों मल्ल मारने वाले सोच के आपस में बात करने लगे भाई ये मर नहीं रहा है, अगर ये मरेगा नहीं तो राजा हमारी हत्या कर देंगे, हमारे फैमिली को भी नष्ट कर देंगे, अब हम करें क्या, ये तो हमारी समस्या है, ये मर ही नहीं रहा है। आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जिसको एक बाजार से दूसरे बाजार तक जाने में जिंदा रह सकता हो, पहले ही बाजार में मर जाता था, और तो 22 बाजार तक तुम्हारी पिटाई हो गई और तुम अभी भी जिंदा हो कौन तुम, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं मालूम पड़ रहा है। जब ये बात सब सुनने में आई हरिदास ने कहा क्या तुम मेरे कारण तुम्हारी मृत्यु हो सकती है?
नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे तुम्हारी रक्षा करने को तैयार हूँ। हालांकि वो की पिलाई कर रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर चाहते थे कि मेरे कारण तुम्हारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तो मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, मैं मृत्यु प्राप्त हो चुका ऐसा ढोंग कर रहा हूँ और तुम मुझे उठा करके पानी में फेंक दो, बोल देना राजा मर गया। तो मारने वाले भी सोचे कि हमने आपको ऐसे ही 22 बाजार में पीटा, आप कैसे व्यक्ति हो, आपको हमारे हृदय में कोई घृणा नहीं है और आप हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर रहे हो। तो हरिदास ठाकुर को चरण पकड़ लिया उन लोगों ने, मारने वालों ने, लेकिन हरिदास ठाकुर के आदेश के अनुसार उन दोनों उन्होंने हरिदास ठाकुर को उठा करके फेंक दिया पानी में, और पानी में फिर निकल करके हरिदास साहब दूसरे किनारे चले गए। एक बार राजा ने हरिदास ठाकुर की परीक्षा करने के लिए रामचंद्र खान करके राजा था कोई वहां का, उसने एक वेश्या को भेजा था हरिदास ठाकुर का ईर्ष्या के कारण, बोले इतना बदमाश है, सबको हिंदू बना देता है, ये निरंतर हरिनाम बोलता रहता है, इसकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई है, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो किसी ने कहा भाई इसको मारो मत, इस तरह से मारने से फायदा नहीं है, ऐसा कर दो कि इसकी कीर्ति को नष्ट कर दो, एक वेश्या को भेज दो और वो उसका ध्यान भंग कर देगी, उसका मन विचलित कर देगी, उस समय उसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे और सबको बताएंगे देखो तुम्हारा हरिदास ढोंगी है, देखो तुम्हारा हरिदास ढोंगी है। तो हाँ ये अच्छा है। तो सबसे प्रसिद्ध वहां की जो सबसे सुंदर वेश्या है उसको लेके आए और वो वेश्या हरिदास ठाकुर के चरणों में आकर प्रणाम किया, तुलसी महाराज की परिक्रमा की उसने, हरिदास को कहा बहुत मीठे शब्दों में और ऐसा वातावरण क्रिएट किया कि हरिदास ठाकुर का मन विचलित हो जाए। हरिदास ठाकुर ने कहा और वेश्या ने कहा कि तुम कितने सुंदर हैंडसम नौजवान हो और इस जगह का सबसे सुंदरी तो मैं हूं, मेरा इच्छा है कि मैं तुमसे पुत्र प्राप्त करूं, क्यों ना हमारा मिलन हो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी करूंगा किंतु मेरा यह व्रत है कि जब तक मैं 3 लाख बार नाम जप नहीं करता तब तक मैं और कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें आपत्ति ना हो तो तुम यहाँ पर बैठो और मेरा जैसे ही नाम खत्म हो जाएगा 3 लाख बार तो मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो वेश्या वहां पर बैठ गए हरिदास के सामने और वहां पर वो हरिदास ठाकुर निरंतर जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। सुबह होने आई और वेश्या ने कहा अब तो सूर्य उदय होने वाला है, आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, अब तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं क्या करूँ, क्षमा करो, मैं चाहता था तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए लेकिन मेरे नाम जब समाप्त नहीं हुए, ये 3 लाख नाम जब मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन तुम फिर से आ जाना आज, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो दूसरे दिन फिर से रात को आई, फिर से प्रणाम किया, हरिदास ठाकुर ने कहा तुम बैठो थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं मेरा जब फिनिश कर देता हूँ। और इस तरह से पुनः पूरी रात जब किए हरिदास ठाकुर को सुनते रहे और दूसरे दिन सुबह फिर से हरिदास ठाकुर ने यही कहा कि मुझे क्षमा कर देना, आज भी मैं जब समाप्त नहीं कर पाया, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सका, लेकिन अब मैं पूरा प्रयास करूँगा, एक बार तुम आओ आज रात को आना, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूँगा। तीसरी बार जब वो वेश्या आई हरिदास ठाकुर के पास और अभी ऐसा परिवर्तन हो गया कि 2 दिन से वो निरंतर हरिकृष्ण महामंत्र हरिदास ठाकुर जैसे परम भागवत वैष्णव के मुख से निरंतर श्रवण कर रही थी और उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि जब हरिदास ठाकुर रात के समय में जप कर रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, तो वेश्या भी साथ में जप करना शुरू कर दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
वो रात हरिदास ठाकुर के साथ जग किया और हरिदास ठाकुर ने कहा मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। तो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई वेश्या। उसने कहा कि आप परम पवित्र वैष्णव हैं, आप मुझे कृपा करो, मैं एक वेश्या हूँ, राजा के द्वारा भेजी गई हूँ, तुम्हारा जो धर्म है उसको भ्रष्ट करने के लिए मैं आई थी, मैं इतना कलुषित विचार से उद्देश्य से आई थी, लेकिन आपके प्रभाव से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, मेरी सारी भौतिक कामना नष्ट हो गई। हरिदास ठाकुर कहे उस वेश्या को, मुझे पता है कि तुम राजा के द्वारा भेजी गई हो, मैं पहले ही दिन जानता था कि तुम मेरा धर्म भ्रष्ट करने के लिए यहाँ पर आई हो। वास्तव में मैं तुम्हारे यहीं इधर आने के पहले स्थान छोड़कर चले जाने वाला था, किंतु तुम्हारे प्रति करुणा के कारण मैं यहाँ इस स्थान पर 3 दिन और रुका केवल तुम्हारे लिए, तुम्हें कृष्ण प्रेम का दान करना चाहता था और मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब मैं स्थान छोड़ के जा रहा हूँ, अब तुम निरंतर यहाँ पर हरे कृष्ण कीर्तन करो। उसने कहा कि किंतु मैं तो बड़ी पापी हूँ, आप मुझे दीक्षा दीजिए। हरिदास ठाकुर ने कहा कि तुमने जो पाप से धन इकट्ठा किया है वो सब बांट दो ब्राह्मणों को और अपना सिर मुंडा करके सफेद वस्त्र धारण कर लो और यहाँ पर बैठकर तुलसी महारानी के पास बैठकर प्रतिदिन हरिनाम का जप करो, आज से तुम इस भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। इस तरह से हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या का भी उद्धार कर दिया। एक बार इसी तरह से माया देवी स्वयं आए थे तो हरिदास ठाकुर ने इसी तरह से माया देवी को दीक्षा दे दी। हम लोग तो ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए कि हम भी माया देवी के सामने बैठकर जब करेंगे माया देवी हमें कच्चा चढ़ा जाएगी, लेकिन ये केवल हरिदास ठाकुर का शक्ति था, उनका महिमा था, ये उनकी पवित्रता थी, ये कि माया देवी को भी दीक्षा दे सके, माया देवी को भी भक्त बना दिया। तो यह हरिदास ठाकुर जब अपना अंतिम समय पसार कर रहे थे तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा, चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने आए जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के उनके भक्त के साथ गोविंद के साथ, और कहा कि हरिदास लो तुम्हारे लिए प्रसाद, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। हरिदास ठाकुर बोले, बीमार से लेटे हुए थे, हरिदास ठाकुर ने कहा कि आज मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता, प्रणाम करता हूँ। तो क्यों, जगन्नाथ जी का प्रसाद क्यों ग्रहण नहीं करेंगे आप? बोले आज मेरे नियम का जो माला है 3 लाख नाम जब 190 से अधिक माला रोज हरे कृष्ण मंत्र की, हम लोग तो 16 माला करने समय मुँह में से फिंग आ जाता है, सोचने लगते कई बार बैठे हुए ना ऐसे, ये गुरु महाराज हमें 16 माला जप करने का क्यों आदेश देते हैं? उनको कहाँ पता है कि मैं घर गृहस्थी वाला आदमी हूँ, मेरे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, उनको कहाँ पता है, कहाँ उनको पता है कि धन कमाना होता है, पत्नी सोचती है पति की सेवा करनी होती है, पति सोचता है पत्नी को सहन करना होता है, ये सब वो कहाँ जानते हैं? गुरु जी, गुरु जी को कहाँ पता है कि मुझे टीवी भी देखना होता है, हमें 16 माला दे दिया रोज करने के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे रोज प्रतिदिन, और जब तक ये जब समाप्त नहीं होते तब तक कुछ खाते नहीं और पीते भी नहीं। 3 लाख नाम जप करने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटा चाहिए और प्रतिदिन ये करते थे, पूरा मन से करते थे, मैकेनिकल नहीं करते थे, ऐसे टाइम पास कर रहे थे ऐसा नहीं कर रहे थे, पूरा मन से करते थे। हरिदास ठाकुर की इस अवस्था को देख करके महाप्रभु बताए कि हरिदास ये सब नियम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इस नियम से पक हो चुके हो, छोड़ दो ये नियम, क्यों करते हो 3 लाख नाम जप, कम कर दो इसकी संख्या। तो हरिदास ठाकुर कहे, प्रभु आप तो सब जानते हो फिर भी आप मुझे ऐसा कह रहे हो, मेरे लिए तिमना नाम जप करना, त्याग करना अब संभव है। मेरा जन्म लेच्छ कुल में हुआ है, मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा अधम हूँ, नीच हूँ, मैं ये नियम त्याग नहीं कर सकता, चाहे मेरे प्राण भी चले जाए, मुझे 3 लाख नाम जप प्रतिदिन करना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर की इस भावना को देख के माँ का हृदय बड़ा विवल हो रहा था, लेकिन हरिदास तुम अस्वस्थ हो क्या, तुम स्वस्थ हो? महाप्रभु का उत्तर हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं शरीर से तो स्वस्थ हूं लेकिन मन से अस्वस्थ हूं। बोले क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में अभी भी कृष्ण प्रेम उजागर नहीं हो पाया है, और मेरे हृदय में आपके चरणों के प्रति निष्कपट भक्ति नहीं भी प्राप्त है, मैं मन से अस्वस्थ हूं, लेकिन अब मेरा शरीर नष्ट होने वाला है। मेरी एक विनती है, एक गुस्ताखी, मैं एक ऐसा निर्लज प्रार्थना करना चाहता हूँ आपसे, अगर आप इस प्रार्थना को स्वीकार कर ले। बोले क्या प्रार्थना है हरिदास तुम्हारी? मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मेरे आपके चरणों में प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप अपनी लीला अभी कुछ ही समय के पश्चात समाप्त करने वाले हो, कुछ ही साल में, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस लीला को समाप्त करो, उसके पहले मेरा शरीर नष्ट हो जाए, मेरा लीला समाप्त हो जाए, मेरा मृत्यु आ जाए। तो हरिदास ठाकुर महाप्रभु बताए, हरिदास ठाकुर तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है कि जो मैं पूरी नहीं करता, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हें एक चीज का थोड़ा सा ही आभास है क्या? जैसे तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते, तो तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारे बिना जीवित रह सकता हूं? मैं मेरे अपने हरिदास के बिना जीवित रह सकता हूं? किंतु तुमने इच्छा प्रस्तुत की है, इसलिए तथास्तु, मैं तुम्हारी इच्छा को कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। दूसरे दिन महाप्रभु फिर से उनके पास आए। महाप्रभु पूछा, हरिदास क्या समाचार है? हरिदास ठाकुर ने कहे, जो आपकी इच्छा प्रभु ऐसे आप कहोगे। तो महाप्रभु ये सुनकर के सब भक्तों को कहा, कीर्तन शुरू करो, हरि नाम संकीर्तन शुरू करो। सब भक्त लोग कीर्तन करने लगे, और सब भक्तों के कीर्तन करते करते हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के चरण अपने छाती पर रख दिए, और छाती पर रखते हुए अपने बड़ी बड़ी आंखों से चैतन्य महाप्रभु के मुख कमल को देखते 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 उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया। श्री हरिदास ठाकुर के चैतन्य महाप्रभु का हृदय इतना गदगद हो गया हरिदास ठाकुर के विरह से। हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने अपने हाथों से उनके मृतक शरीर को उठा लिया, और उठा करके जोर जोर से कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, और कीर्तन कर रहे थे, नर्तन कर रहे थे, उनके शरीर को उठा करके कई देर तक, कई समय तक ये कीर्तन चलता रहा। तब सुंदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु कहा, प्रभु हमें हरिदास के अंतिम जो रिचुअल्स है उनकी समाधि बनानी का, वो हमें करना पड़ेगा। तो महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर के शरीर को उठा करके कीर्तन के प्रोसेसन के साथ समुद्र पर ले गए, और समुद्र पर उनके शरीर को स्नान कराया, और स्नान करा करके उन्होंने घोषणा की, आज से ये महोदधि समुद्र जगन्नाथपुरी का महातीर्थराज हो जाएगा, और जो भक्त इस तीर्थराज का जल का मस्तक पर धारण करेगा उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ऐसा महाप्रभु ने वरदान दिया समुद्र को, और फिर महाप्रभु हरिदास ठाकुर के शरीर को समाधि देने के लिए खड्डा खोदे, स्वयं अपने हाथों से मिट्टी हटाई और हरिदास के शरीर को रखा उसके अंदर, और स्वयं वो इतने विवल थे, वो स्वयं सब कार्य अपने हाथों से करना चाहते थे। उन भक्तों ने कहा कि प्रभु हम ये सब कार्य करेंगे, आप मत कीजिए, ये सब काम हम करेंगे। फिर समाधि बनाई हरिदास ठाकुर की उधर,
और महाप्रभु ने तुरंत गए सब दुकान दुकान जाकर के भिक्षा मांगने लगे, मैं हरिदास ठाकुर के लिए फिस्ट देना चाहता हूँ उनके जाने के बाद। भगवान के भक्त जब शरीर छोड़ते हैं तो एक रूप से दुख की बात भी है और सुख की बात भी है। दुख की बात इसलिए है क्योंकि अब हमें उनका संग प्राप्त नहीं होगा, ये बहुत बड़ी दुख। जैसे कल हम चर्चा किए थे कि विरह मध्य कौन है विरह सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा विरह, सबसे बड़ा कष्ट जो होता है, सबसे बड़ा दुख जो होता है, कौन सा दुख है? तो रामानंद राय कहे कि दुख मध्य सबसे बड़ा भक्त विरह, भक्त का जो विरह होता है दुख मध्य सबसे बड़ा विरह है। तो महापुरुष विरह में दुखी थे, लेकिन साथ साथ में सुख किस तरह का है कि वो भक्त अपने भगवान के चरणों में उनकी लीलाओं में सहाय करने के लिए फिर से अपने स्थान में चले गए। ये सुख की बात है कि वो भगवान के चरणों में अपने लीला, भगवान की लीला सेवा करने के लिए चले गए। तो महाप्रभु ने फिस्ट का आयोजन किया, एक आदमी को पांच आठ आदमी का भोजन परोसने लगे, कोई खा नहीं पाए। सरोज दामोदर कहें कि इस तरह से तो फिस्ट नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने कहा महाप्रभु हम करेंगे ही करेंगे। महाप्रभु बहुत उत्साहित थे हरिदास ठाकुर के फिस्ट बनाने के लिए। तो ऐसा महान भक्त हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिए नाम आचार्य हरिदास। चैतन्य महाप्रभु एक बार हरिदास ठाकुर को पूछे थे, हरिदास एक कलयुग की जो प्रजा है लेच वगैरह जो पापी है उन लोग का उद्धार कैसे होगा? महाप्रभु बोले कि हरिदास ठाकुर कहे कि चिंता मत कीजिए प्रभु, हाराम हाराम बोले नाधाम भाष है। एक कलयुग में केवल कोई नाम भाष भी बोल देगा हरि नाम, हाराम हाराम तो गाली है, गाली है, लेकिन उसमें भी राम शब्द है, इसलिए उस व्यक्ति को भगवान राम बोला है ऐसा मान के चलेंगे। हरि नाम को उच्चारण के माध्यम से चाहे वो मन से किया है मन से नहीं किया है, फिर भी उस महामंत्र के ध्वनि से हरि नाम का उच्चारण से मनुष्य की मुक्ति हो सकती है, उसका हृदय स्वच्छ हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कोई बड़े बड़े ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने ये युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की स्थापना की और सबको ये हरिनाम दिया और जो भविष्यवाणी की पृथ्वी से जता नगराधिग्राम जताशी नगराधिग्राम स्वरूप प्रचार हरिनाम, इस पृथ्वी में जितने भी नगर और गांव है वो सब जगह ये हरिनाम का प्रचार होगा, ऐसी भविष्यवाणी की थी। स्वयं उन्होंने भगवद गीता श्रीमद भागवतम की टीकाएं नहीं लिखी, उन्होंने केवल 8 श्लोक दिए थे शिक्षाष्टकम के, जो चैतन्य शिक्षाष्टकम सदस्य, जिसमें पहले श्लोक में बताया गया है कि केतो दर्पण महाजनम भव महादावाग्नि निर्वापण श्रेय कही जो चंद्रकाम विद्या। चेतो दर्पण ये हरिनाम जो है भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण जो है वो हमारे चित्त रूपी जो दर्पण है उसको साफ कर देता है, उसमें जो भरी पड़ी मैल है उसको नष्ट कर देता है। भव महादावाग्नि ये बड़ा संसार में जो दावाग्नि जो जल रहा है जिसमें हम सब तप रहे हैं इस दावाग्नि को नष्ट कर देता है। दावाग्नि निर्वापण श्रेय कई रव चंद्रिका शीतलता का वितरण कर रहा है, अमृत का आस्वादन कराता है। श्रेय कई रव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवन आनंदांगुधि वर्धनम प्रतिक्षण आपको उत्तम कोटि का आनंद निरंतर उसका समुद्र आपको प्रदान कर रहा है। आनंदांगुधि आनंद का समुद्र आपको दे रहा है कौन? हरिनाम भगवान के दिव्य नाम को उच्चारण। आनंदामुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वाद करा रहा है आपको यह हरिनाम। परम विजय जय श्री कृष्ण संकेत सर्वात्मस्न परम परम विजय जय श्री कृष्ण, यह कीर्तन का जय जयकार परम विजय, ये पहला श्लोक उन्होंने बताया। दूसरे श्लोक में बताए नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, हे प्रभु आपने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति रख दी है, तत्रात्मता नियमित स्मरण ये न काल, और इसको जप करने के लिए कोई विशेष नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के दिव्य नामों को कभी भी कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जप कर सकता है। भगवान के नाम इस सारे नियमों से पर है। तत्रात्मता स्मरण ये न काल दुर्दैव विदुषण यहाँ नाम नाम काल बहुत अन्य सर्वशक्ति तत्रात्मता नियमित स्मरण न काल देन एतादृशी तव कृपा भगवान नमः। हे प्रभु आपने इतनी बड़ी कृपा हम मुझ पर दी है, इतना महान आशीर्वाद मुझे दिया है, आपका हरिनाम मुझे दिया है, इतनी बड़ी कृपा आपने मुझ पर दी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखो दुर्दैवम इद्दुषम यह जनी न अनुराग, किंतु मुझे इस भगवान के नाम में कोई अनुराग ही नहीं हो रहा है, कोई रुचि ही नहीं हो रही। दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा दिनाद भी सुनी चे तरल अपे श्रेष्ठ, जो व्यक्ति अपने आप को कांस के तिनके से भी अधिक तुच्छ मानता है, जो व्यक्ति वृक्ष से भी अधिक सहनशील है, जो व्यक्ति सबको आदर देता है और स्वयं किसी आदर की अपेक्षा नहीं करता, वह व्यक्ति परम निरंतर हरिनाम कर सकता है। चांद भी सुनिचेन तरल अभी सहिष्णुना अमामीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि, वह व्यक्ति निरंतर कीर्तन कर सकता है। जो हरिदास ठाकुर की तरह हरिनाम जप करना चाहता है, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मार्ग पर चलना चाहता है, जो भक्त निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहता है, उसको इन नियमों का पालन करना चाहिए। घास के तिनसे से भी अपने आप को तुच्छ मानना चाहिए, वृक्ष से भी सहनशील होना चाहिए, तब जाकर वो हरिनाम जप कर पाया। चौथे श्लोक में कहा न धनम न जनम न सुंदरम, हे प्रभु मुझे धन की इच्छा नहीं है, मुझे अनुयायियों की इच्छा नहीं है, मुझे सुंदरी की इच्छा नहीं है। कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, मुझे मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, मुझे जन्म जन्म तक मुझे अनेक अनेक जन्म भी लेने पड़े तो मुझे क्या दीजिए, भक्ता भक्ति अहितु मुझे आपकी अहितु की भक्ति दान दीजिए। ये चौथा श्लोक चैतन्य महाप्रभु बताए। पांचवे श्लोक में महाप्रभु बताए अयि नंद तनुज किंकरम, हे नंद कुमार के पुत्र, कौन है नंद कुमार का पुत्र, कृष्ण नंद महाराज का पुत्र, अयि नंद तनुज मैं तुम्हारा किंकर हूं, दास हूं मैं तुम्हारा, सेवक दास किंकर कंका, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम गिर गया हूं, पतन हो गया है मेरा, विषमे भवाम बुदौ ये विषम भव सागर में मैं फंस गया हूं, कृपया तव पाद पंकज, हे प्रभु कृपा करके मुझे आपके चरण कमल की एक रज के समान बना दीजिए, चरण कमल की एक धूली बनाइए, वहां पर मुझे स्थान दीजिए, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम चिंतन, ऐसा नहीं कहा कि मुझे कोई गोपी बना दीजिए या आपके मुकुट बना दीजिए या गले में आपके फूल की माला बना दीजिए, ऐसा नहीं कहा, वो कहे कि आपके चरण की एक रज का कण बना दीजिए, धूली का कण बना दीजिए। फिर छठे श्लोक में कहा कि नयनम गलत अश्रुधार है, कब ऐसा समय आएगा जब मेरे नयन आपके नाम का उच्चारण करते करते अश्रुधारा बहने लगे, बदनम गदगद रुद्ध आ गया, मेरा बदन जो है मेरा गला जो है वो गदगद हो जाएगा, पुलकित निचितम बपुर कदा, मेरे शरीर में रोमांच होने लगेंगे, तब नाम ग्रहणे भविष्यति, आपका नाम उच्चारण करके इस प्रकार के दिव्य लक्षण मेरे जीवन में कब प्रकट होंगे। सातवें श्लोक में उन्होंने बताया युगाहितम निमेषेण, हे प्रभु आपके विरह में एक एक क्षण मुझे अनेक अनेक युग समान दिखते हैं,
युगायतम निमेषम चक्षुशास्त्र अभिषायतम, आपके दर्शन नहीं होने पर मुझे युग युग जैसा समय व्यतीत लगता है। शून्यायतम जगत सर्वम, ये सारा संसार सारा जगत मुझे शून्य सा प्रतीत होता है। गोविंद विरहेण में, हे गोविंद आपके विरह में मैं जीवित नहीं रह पा रहा हूं। और अंत में क्या कहा आठवें श्लोक में, आश्लिष्य वाष्ठमा, हे प्रभु आप स्वतंत्र ईश्वर हो, आप चाहो तो मुझे आलिंगन दे सकते हो। आश्लिष्य वादरता पिनष्ठमा, आप मुझे चाहो तो आलिंगन दे सकते हो या अपने चरण से कुचल दे सकते हो। पिनष्ठमा अदर्शना, और मुझे दर्शन नहीं देकर कि मेरा हृदय भंग कर सकते हो। अदर्शना मर्द हता करो तो आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, आप जो इच्छा है वो करने के लिए स्वतंत्र हो। फिर भी अदर्शना मर्द हता करो तो यथा तथा वा विदधा तो लंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव ना पर, फिर भी जन्म जन्म तक आप ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे और इसके अलावा कोई मेरा नाथ नहीं। ये आठ श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने बताए थे शिक्षाष्टकम में, और ये सारा जो खजाना है चैतन्य कृपा का, चैतन्य लीला का, ये चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाओं का उनका संदेश है, उनकी कथा है, ये सारा कथा वगैरह जो खजाना है, ये हमें किस महान भाव ने दिए। वो व्यक्ति जिसने चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन किया, चैतन्य महाप्रभु ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा, उन्होंने कहा था एक बार चैतन्य महाप्रभु ने कि यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देश जाए, वे पहले तो कहा कि मैं हरिनाम के हरिनाम और तीक्ष्ण खड्ग लेकर के मैं सबको काटिया फिर मैं सबको उद्धार करूंगा, किंतु अगर कुछ लोग भाग जाएंगे दूसरे देशों में, अमेरिका अफ्रीका रशिया वगैरह सब जगह चले जाएंगे लोग, तो मैं और सेनापति भक्त, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा इस संसार में और वो सबको गिन गिन कर चुन चुन कर ये हरिनाम देने लगेगा। और वो व्यक्ति कौन थे महान व्यक्ति जिसने चैतन्य महाप्रभु की कृपा को संसार के कोने कोने तक फैलाया? श्रील प्रभुपाद के। और ये श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है कि हर गांव में हर शहर में हे हरि नाम का उच्चारण हो, सबके हृदय परिवर्तन हो, सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, यह उद्देश्य से उन्होंने 70 साल की आयु में अमेरिका की यात्रा की और वहाँ पर अनेक अनेक लाखों लोगों को भक्त बनाया, रथ यात्रा का आयोजन किए, ग्रंथों को प्रकाशन किया और ऐसे ऐसे नगरों में ऐसे ऐसे नीच से नीच लोगों, जो व्यभिचार गौ मांस वगैरह खाने वाले, इस नीच के नीच लोगों को शुद्ध ब्राह्मण बना करके उनको हरिनाम का कीर्तन करते कर दिया। आज उनकी कृपा से, उनके प्रयास से चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पे 60 से 70 देशों के लोग सब साथ मिलकर के हाथ में हाथ लगा करके नाचते हैं और कीर्तन करते हैं, जय सचिनंदन जय सचिनंदन, इस तरह से कीर्तन करते हैं। और सबका हृदय परिवर्तन कर दिया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजे गए विशेष आचार्य है और यही हम सब का भी कर्तव्य है। हम सब श्री प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं, उनके शिष्य प्रशिष्ट हैं और हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि किस तरह से हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को हर कोने में पहुंचाए, किस तरह से हम गांधीनगर के सभी लोगों को कृष्ण भावनाओं से प्रसारित करें, इस स्थान का उद्धार करें। तो इसलिए आप सब भक्त पिछले 5 दिनों से चैतन्य महाप्रभु की इस कथाओं को शिक्षाओं को सुनते आ रहे हैं, आप सब भक्त इस उपहार को साथ में लेके जाइए कि आप अपने जीवन को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में उनकी लीलाओं में उनकी सेवा में समर्पित करें। ऐसा संकल्प का लेने का प्रयास कीजिए कि आप अपने जीवन को श्री प्रभुपाद के चरणों में समर्पित करें जिन्होंने ये इतना महान सेवा किया जितने महाप्रभु को, और उनका उद्देश्य एक ही है, सबको कृष्ण भक्ति दान दे। जब हम अपने आप को कृष्ण भक्ति से हम प्रभावित कर सकते हैं, जब हम अपने आप को जोड़ सकते हैं कृष्ण भक्ति से, तभी हम किसी को ये संदेश बता सकते हैं। जन्म सार्थक कई करा पर होगा, पहले हम अपना जन्म सार्थक करें और परोपकार करें। हम कृष्ण भक्ति को स्वीकार करेंगे, हम हरिनाम का जप शुरू करेंगे, हम ग्रंथों को पढ़ना शुरू करेंगे, हम भक्तों की संगति में आना शुरू करेंगे, हम इस शनिवार के सत्संग में आना शुरू करेंगे यहाँ पर प्रति शनिवार को, और हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे भगवान के चरणों में, तब जाके हमारा हृदय स्वच्छ होगा। और फिर आप अनेक अनेक लोगों को जोड़ोगे, अनेक लोगों को कहोगे क्यों भाई मैं उत्तम चीज केवल मैं ही क्यों, तुम सब भी आओ, तुम सब भी हरिनाम जप करो। ये हरिनाम कृष्ण प्रेम हम सबके लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए, सबके लिए है, तो आपको भी इस लाभ का, इस चीज का लाभ प्राप्त हो। तो यही उद्देश्य से हमने यहाँ पर 5 दिन का ये जो कार्यक्रम रखा था, चैतन्य चरितामृत पर विशेष कथा है, लीला है, आप सब गांधीनगर वाले भक्तों की कृपा से मुझे थोड़ा अवसर प्राप्त हुआ कि मैं आपके चरणों की सेवा कर सकूं, और कुछ टूटे शब्दों से चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गाने का प्रयास कर सकूं। मुझे आशा है कि चैतन्य महाप्रभु का दिव्य साहित्य चैतन्य चरितामृत है, उसका महिमा, उसका गान सुनकर के आपका हृदय अवश्य ही प्रफुल्लित हुआ होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का कथा बड़ा मधुर है। और ये निश्चित है, क्योंकि आपने कथा का श्रवण किया है, तो आपका हृदय निर्मल होगा ही होगा, यह निश्चित है। किंतु कथा के द्वारा अगर उससे कोई आपसे त्रुटि हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, तो आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। तो मैं इस आशा से समापन करना चाहता हूँ कि आप इस चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को अधिक से अधिक सुनिए, पढ़िए, अधिक से अधिक भक्तों का संग कीजिए, और ये हरिनाम को खुद भी जपिए और औरों को भी दान दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।